आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ।
राजा युधिष्ठिर राजस्वी यज्ञ के बारे में अपने मंत्रिमंडल की राय सुनकर अपने भाइयों महर्षि व्यास जी और ऋषियों आदि से परामर्श करते हैं। तब वे सब भी यही कहते हैं, राजन आप राजसूय यज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। असल में राजसूय यज्ञ वैदिक काल से चली आ रही यज्ञ परंपरा के अंतर्गत एक समारोह है जिसे राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करते थे। राजाओं में श्रेष्ठ राजा का स्थान प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था जिसमें सभी राजाओं की सहमति होती थी। यदि कोई इसका विरोध करता है तो उसे उस राजा से युद्ध करना होता है। खैर, सबसे परामर्श करने के बाद भी धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। अंत में उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। तब युधिष्ठिर इसके निमित्त श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाते हैं। युधिष्ठिर का संदेश पाते ही श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ चले आए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई राय की जानकारी दी और उनसे उनकी राय मांगी। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा,
भ्राता युधिष्ठिर, आप वास्तव में राजसूय यज्ञ के अधिकारी हैं, परंतु अभी आपके लिए राजसूय यज्ञ के मार्ग में एक बाधा है। इस समय राजा जरासंध ने कई राजाओं को हराकर उन्हें अपने दुर्ग में बंदी बना रखा है। यदि हम अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करें तब भी उसका विनाश नहीं हो सकता। भगवान शंकर की उपासना से उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है कि वो अपने बाहुबल से राजाओं को जीतकर उन्हें अपने पहाड़ी दुर्ग में बंदी बना लेता है। अब तक वो 86 राजाओं को बंदी बना चुका है। उसे 14 राजाओं को अभी और बंदी बनाना बाकी है। उसके बाद जरासंध उन 100 राजाओं का एक साथ मर्दन करने वाला है।
श्री कृष्ण की बात सुनकर स्वाभाविक है कि युधिष्ठिर चिंतित हो जाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
जो भी राजा जरासंध का वध करके उसके इस क्रूर कर्म को रोक देगा वो राजा निश्चित ही सम्राट बनेगा। इसीलिए आपको जरासंध का वध करके उन बंदी राजाओं को मुक्त कराना होगा, क्योंकि ये कार्य किए बिना आपका राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आप ही बताइए जरासंध को कौन मार सकता है। तब भीम कहते हैं,
माधव में नीति है, मुझ में बल है और अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है। हम तीनों मिलकर जरासंध का वध अवश्य कर सकते हैं।
भीम की बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भीम और अर्जुन मेरे मित्र हैं और आप मेरे मन हैं केशव, इसीलिए मैं आप तीनों को उस दुष्ट जरासंध से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता। मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं होना चाहता। मैं राजसूय यज्ञ का विचार ही अपने मन से निकाल देता हूं। ऐसे में अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा,
भ्राता श्री, यदि हम लोग राजसूय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध करके उन राजाओं की रक्षा कर सके तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा। मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रशंसा के योग्य लगते हैं।
श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर से कहा,
भ्राता युधिष्ठिर, युद्ध से बचकर कोई भी प्राणी कभी अमर नहीं हुआ। वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वो नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करे और अपनी विजय की भरपूर चेष्टा करे। यदि वो असफल हुआ तो ये लोक प्राप्त होगा, अन्यथा परलोक प्राप्त होगा। दोनों ही अवस्था में पुरुषार्थ सिद्ध होता है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा को दूर किया। उनकी छत्र छाया में भीम ने मल्ल युद्ध कर जरासंध का वध किया था, जिसके बाद राजा युधिष्ठिर ने उन 86 बंदी राजाओं को पहाड़ी दुर्ग से मुक्त कराया। इसके बाद राजधानी इंद्रप्रस्थ में विशाल राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। बड़े बड़े राजा महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे। निमंत्रण पाकर कौरव भी यज्ञ में सम्मिलित हुए। तब इंद्रप्रस्थ की सुंदरता देखकर दुर्योधन आश्चर्यचकित हो गया। दुर्योधन जब उस महल को देखने पहुंचा जिसे मैं दानव ने बनाया था, तब वो स्थल के भ्रम में एक जलाशय में जा गिरा। दुर्योधन को जल में गिरा देख भीम को हंसी आ गई। भीम जोर जोर से हंसने लगा। ऐसे में दुर्योधन को भीम की हंसी के साथ साथ द्रौपदी की हंसी भी सुनाई पड़ती है। इसे अपना अपमान जानकर दुर्योधन मन ही मन बहुत क्रोधित हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि तब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी थी, लेकिन सभा पर्व की मूल कथा के अनुसार इस घटना के समय युधिष्ठिर और द्रौपदी दोनों ही वहां नहीं थे। वहां भीम के साथ तीनों छोटे भाई और श्री कृष्ण खड़े थे। उधर यज्ञ सभा में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य आदि गुरुजन पधारते हैं। युधिष्ठिर उन सब की अगवानी करते हैं। वे भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि से विनती करते हुए कहते हैं, आप सब इस यज्ञ में मुझ पर सब प्रकार से अनुग्रह करें। मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरा यह धन अपनी इच्छा अनुसार सत्य कर्मों में लगाएं। हम सबके कल्याण हेतु आप सब यथा योग्य अधिकारों को स्वीकार करें। राजा युधिष्ठिर ने बड़ी विनम्रता से दुशासन को भोज्य सामग्री की देखरेख का अधिकार सौंपा। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा सत्कार के लिए युधिष्ठिर ने संजय को नियुक्त किया। उत्तम स्वर्ण और रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में युधिष्ठिर ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। धर्मात्मा विदुर जी पर धन को व्यय करने की देखरेख का भार सौंपा। इस प्रकार सब श्रेष्ठ पुरुषों को युधिष्ठिर ने यथा योग्य भिन्न भिन्न कार्यों का अधिकार सौंप दिया। ठीक समय पर ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर को यज्ञ की दीक्षा दी। यज्ञ में पधारे राजा महाराजाओं ने युधिष्ठिर को बहुमूल्य उपहार दिए और उन्हें अपना सम्राट स्वीकार किया। धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी यज्ञ सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा नहीं था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। यज्ञ में पधारे हुए राजा महाराजा बहुमूल्य रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि कर रहे थे। राजसूय यज्ञ संपन्न होने पर पितामह भीष्म की सलाह से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया, जिससे वहां उपस्थित चेदी नरेश शिशुपाल क्रोधित हो गया और झगड़े पर उतारू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि अंततः श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर डाला। शिशुपाल की मृत्यु से कौरव, विशेषकर दुर्योधन, बहुत क्रोधित हो गया। कर्ण भी शिशुपाल की मृत्यु से बहुत दुखी हो गया। राजसूय यज्ञ जैसे शुभ अवसर पर पूरा परिवेश कुछ ही क्षणों में अशुभता से भर गया। कुटिल दुर्योधन स्वभाववश युधिष्ठिर के यश को देखकर मन ही मन पूरी तरह भड़क उठा था, क्योंकि इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी थी। इसके बाद दुर्योधन ने फिर नई चाल चली।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।